कृपया मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 8 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय पहले पद से लेकर उसके 8 पद तक। सबत के बीतने पर सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई और देखो एक बहुत ही भारी भूकंप हुआ क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर से उतर कर आया और पत्थर को अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा था बिजली का सा और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। पैर वे उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा डरो मत क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वो यहां नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखो जहां वो पड़ा हुआ था। उसके चेलों को शीघ्र जाकर बताओ कि वो मरों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाएगा वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुम्हें बता दिया। इस पर वे भय और बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी और चेलों को ये सुसमाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे हमने आरंभ में से सुनते हम चले आ रहे हैं कि आज का दिन एक विशेष दिन है और ये एक ऐतिहासिक दिन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास की बात करते हैं तो जैसे हर्षित भैया भी अपने प्रार्थना में और अपने करते हुए स्मरण कर रहे थे कि मात्र ये कहानी नहीं है मिथ्या नहीं है लेकिन ये ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं इतिहास में। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐतिहासिक घटना है और इसीलिए उसके जन्म से BC और AD आरंभ हो गया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना एक अद्भुत महान ऐतिहासिक घटना है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक ऐतिहासिक घटना है और इसीलिए आज पूरे विश्व में इस दिन इतवार के दिन मसीह लोग परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। अधिकतर जहां पर आजादी है यदि परमेश्वर दिनों से बंधा नहीं है लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक घटना है और एक तथ्य है। मैं सर एक उदाहरण देता हूं पहले भी दिया है और आज उसको फिर से दोबारा दोहराना चाहूंगा। एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी एक नदी के ऊपर लगी हुई है। दो पोल जैसे आप सर्कस दिखाने वाले लोग हैं और उस पर लग के कई बार बच्चे सड़क पर किनारे देखते होंगे कुछ मदारी तमाशा दिखाते हैं उसी प्रकार से वो रस्सी बंधी है और एक व्यक्ति उस पर चल रहा है। सामने तथ्य है बीच में विश्वास है फेथ है सामने तथ्य है फैक्ट है बीच में फेथ विश्वास है तीनों एफ्स हैं और पीछे फीलिंग्स हैं भावना है। और ये जो फेथ है ये जो विश्वास है जो बीच में है वो जब तक अपनी निगाहों को तथ्य की ओर लगाए हुए फैक्ट की ओर लगाए हुए है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन जैसी वो अपनी आंख को हटाकर ये फेथ या ये विश्वास पीछे की ओर देखता है भावनाओं की ओर देखता है वो डगमगा जाता है। और मसीह जीवन वो विश्वास है जो सदैव तथ्य को देखकर आगे बढ़ने वाला है भावनाओं के अनुसार नहीं। भावनाएं ऊपर नीचे होती चली आती हैं भावनाएं परिस्थिति के अनुसार बदलती और बिगड़ती और बनती चली जाती हैं भावनाएं मनुष्य को हताश भी कर देती हैं तो आनंदित भी कर देती हैं लेकिन हम भावनाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोग नहीं हैं। हम विश्वास के द्वारा तथ्य की ओर दृष्टि करते हुए आगे बढ़ते चले आते हैं और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उस तथ्य पे आधारित है जो लगभग आज से 2000 पहले ये ऐतिहासिक घटना घट गई। परमेश्वर के वचन में हर सुसमाचार अंतिम अध्याय में इन सब कुछ को क्रम से वर्णन करता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। मैं इस बात को अक्सर बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन में 7 मुख्य घटना है। कल शाम को एक क्वार्टर मीटिंग में मैं बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की सेवा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, प्रभु यीशु मसीह का स्वर पर उठाया जाना और फिर प्रभु यीशु मसीह का पुनः वापस आना, जिसकी प्रतिज्ञा में हम आशा में बांट जोते हैं, थोड़ा विचार करेंगे। ये उसके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है जो जिस पर एक विश्वास आधारित है और जिस पर कलीसिया आधारित है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रत्येक सुसमाचार, चाहे मत्ती हो, चाहे मरकुस हो, चाहे लूका हो, चाहे योना हो, बहुत ही अच्छे रीति से यीशु के जी उठने का वर्णन करते हैं। और न केवल ये, लेकिन वास्तव तो यह है, यीशु का पुनरुत्थान न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान उद्धार प्राप्ति के लिए विश्वास का मुख्य आधार है। अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना होता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में पौलुस बहुत विस्तार से वर्णन करता है, पर आज हम उस पर नहीं जाएंगे। बहुत ही विस्तृत रीति से पूरे पुस्तक में, पूरे उस अध्याय में लिखता है। तो विश्वास, हमारा उद्धार का जो विश्वास है उसका जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह का जूटना है। हमारे सुसमाचार का प्रचार का आधार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, उसका जी उठता है। हमारे कलीसिया का आधार बुनियाद नेम प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, जी उठा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, ये शिष्य उसको छोड़कर चले गए थे। शिष्य घबरा गए थे, कोई गई चला गया, कोई कहीं चला गया, कमरे में बंद थे, बैठ गए थे, डर गए थे। और अब सब ने सोचा कि कहानी खत्म हो गई, ओ यीशु संसार में आया है, हमने उसको बलिदान कर दिया, हमने उसको मार दिया, वो दफना दिया गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। वे नहीं जानते थे खत्म नहीं हुआ, शुरुआत एक नई शुरुआत होने वाली है। वे नहीं जानते थे, यहां तक कि शिष्य भी उस बात से अनभिज्ञ थे, अभी हम देखेंगे आगे चलकर। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, एक हलचल मच गई। उसके जन्म के समय में हलचल मची थी, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय में हलचल मच गई। वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, हमने उसको देखा है, हमने उसको देखा है। पूरे संसार में एक साक्षी, उसकी महिमा, उसकी जय जयकार होने लगी। और तब उसके बाद ये शिष्य भी जो एक दिन डर के मारे बैठ गए थे, इनको परमेश्वर की ओर से एक नया याद मिला कि उन्होंने उस यीशु को, जी उठे यीशु को देख लिया। और तब उसके बाद यही शिष्य थे जाकर प्रचार करने लगे, और प्रचार करने बाद कलीसियाओं का आरंभ हुआ। और उस समय से लेकर कलीसिया बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। कलीसियाओं का अंत नहीं होगा, यीशु मसीह के अनुयायियों का अंत नहीं होगा। चाहे कितना आक्रमण उनके ऊपर हो, चाहे कितने नियम बन जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मनुष्य, कोई भी संसार, कोई भी उसका अधिकार, कोई भी चीज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रसार के कार्य को नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की योजना है। और मेरे प्रियो, क्योंकि ये सारी कथा, ये कलीसिया की बुनियाद, कलीसिया की शुरुआत, कलीसिया का विस्तार प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित है। और इसलिए मेरे प्रियो, काश आज के दिन जब हम यहां पर परमेश्वर के भवन में हैं, मेरा और आपका विश्वास और भी अधिक दोगुना बढ़ जाए, मेरा और आपका उत्साह और भी अधिक दोगुना बढ़ जाए कि हमने जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो केवल मिथ्या नहीं है, केवल कहानी नहीं है, लेकिन वो प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा है। جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور جب جو اس تعلیم جو ہم نے پڑھا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس پستر پر ہم رہتے ہوئے کچھ باتوں کو دیکھنا چاہیں گے. او یہ سچ ہے, قبر خالی ہے, قبر خالی ہے. اور قبر خالی ہے تو تین باتوں کو میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا جو سردوتوں کے دوارا ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات, سردوتوں کی بھومکا اس کارے میں اس کے جی اٹھنے کے بعد پرمیشور پتا کس پرکار سے منوش کو بعد میں لیکن ان سردوتوں کو اپیوگ کر رہا ہے جو اس کی شریشت رچنا ہے. منوش سے پہلے پرمیشور نے سردوتوں کی رچنا کی تھی, ان سردوتوں کو رچنا کرا ہے. اور وہ سردوتوں کی بھومکا, سردوتوں کی ادگوشنا, سردوتوں کا نردیش, تین باتوں کو ہم دیکھنا چاہیں گے. پہلی بات, سردوتوں کی بھومکا اس پربھو یشو مسیح کے جی اٹھنے میں کیا ہے. پرمیشور اپنی یوجنا میں ہو کر منوش کو شامل کرتا ہے, نہ کہ منوش کو شامل کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی یوجنا میں وہ ہر سرشتی کو جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے اس کو وہ شامل کرتا ہے. اور اسی لیے ہم پرمیشور کے وچن میں دیکھتے ہیں اس نے کئی استھان پہ جانوروں کو استعمال کیا, پیڑوں کو استعمال کیا, پکشیوں کو استعمال کیا, کئی طرح سے وہ سرشتی کرتا اور نیرنتر کرتا پرمیشور ہے. اور یہاں پر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ سچ ہے, مریم مگدلینی جس کے اندر سے سات دشٹ آتمائیں نکالی گئی تھی جب پربھو یشو مسیح سیوا میں تھے, یہ بہت ہی پیڑت مہیلا تھی اور اس پیڑت ہونے کارن اس کے جیون کو لوگ دروپیوگ کر رہے تھے. لیکن جب پربھو یشو مسیح کے چرنوں میں آتی ہے, پربھو یشو مسیح اس کے اندر سے دشٹ آتماؤں کو نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب یشو مسیح کی انوائی بن جاتی ہے. اور یپی یشو مسیح قبر میں ہیں لیکن اس سمے پرتھا کے انوسار یہ ایسا ہوتا تھا سبت کے دن کے بعد جو دوسرا دن ہوتا تھا کئی لوگ جاتے تھے اس لوت پہ کچھ مسالے لگاتے تھے تاکہ لوت اور آگے سمے تک سڑنے نہ پائے. اور یہ شاید اسی ریتی سے مریم مگدلینی ہے, دوسری مریم ہے سمتا یشو کی ماں جو کہلاتی تھی یا اور وہ آئی ہیں قبر پہ دیکھنے آئی ہیں. لیکن جیسے ایک آشا سے آئی ہیں آ رہی ہیں لیکن جب آشا سے آ رہی ہیں تو ان کے سامنے ایک وچار آ رہا ہے, ہم قبر پہ تو جا رہے ہیں یشو کو دیکھنے تو جا رہے ہیں لیکن اس قبر پہ تو ایک بہت بڑا پتھر لگا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر ان شاشکوں کے دوارا ایسا نہ ہو کہ اس کی قبر اس کی لوت کو کوئی چرا لے, اس لیے بہت بڑا پتھر رکھ دیا گیا تھا. اور ایسے قبر ایسے بنائی ہوتی تھی اور گول پتھر سے ڈھک کر کے اور بہت بڑے اس تالے سے لگا کر کے چین سے باندھ کر کے اس میں مہر لگائی جاتی تھی کہ اس مہر کو ادھیکاری کے علاوہ کوئی اور نہیں چھو سکتا تھا, اس پر شاشکوں کی مہر رہتی تھی. اس پرکار سے اس کو اس قبر کو سرکشت رکھا گیا تھا. اور ان کے من میں آپس میں وچار تھے, ہم وہاں جائیں گے کیسے ہم اس قبر کے پتھر کو ہٹائیں گے. پرمیشور ادبھت پرمیشور ہے, پرمیشور سب کچھ نینتن کرنے والا پرمیشور ہے. دوسرے پد میں 28 ادھیائی کے دوسرے پد میں جو پہلی بات میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں سردوتوں کی بھومکا, اور دیکھو ایک بہت بھاری بھوکمپ ہوا کیونکہ پرمیشور کا ایک دوت سورج سے اتر آیا اور پتھر کو الگ لڑکا کر اس پر بیٹھ گیا. پرمیشور کا اپائے ہے, پرمیشور ادبھت اپائے کرنے والا ہے. ہر پس میں ایک ایک چھن میں ایک ایک پل میں پرمیشور نینتر کر رہا ہے. میرے پریو جو کچھ بھی اس کی ادھار کی یوجنا ہے, جو کچھ بھی اس کی کلیسیا کی یوجنا ہے, جو کچھ بھی اس کی دلہن کو تیار کرنے کی یوجنا ہے, جو کچھ بھی اس کی نئی سرشتی کی یوجنا ہے, اس یوجنا کو وہ قدم قدم کر کے کیسا پورا کر رہا ہے اور اس میں کس پرکار سے وہ ان کا اپیوگ کر رہا ہے. ابھی وہ اس سمے ان سردوتوں کا اپیوگ کر رہا ہے. ایک چنتا تھی, ایک پرشن تھا, مرکوس ورنن کرتا ہے کہ جب یہ مہیلائیں جا رہی تھی انہوں نے آپس میں کہنے گی وہ پتھر بڑا پتھر کون لڑکائے گا, لیکن متی ورنن کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو سردوتوں نے اس کو لڑکا کر الگ کر دیا. اور تب کیا ہوا,
तीसरा पद, उसका स्वरूप बिजली का सा था और उसके उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे, पैर वे उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। उन स्वर्गदूत देख करके जो वहां पर पहरेदार फैटाए गए थे वो भयभीत हो गए, वो कुछ नहीं कर सके उनका सामना। लेकिन जब पत्थर हटाया गया कहानी तो एक नई कहानी मिली। वहां कोई लाश नहीं है, कोई लौथ नहीं है, कब्र खाली है, कब्र खाली है। उन सब के सामने एक अद्भुत घटना घट गई। और तब क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं? पहली बात मैंने कहा, ये स्वर्गदूतों की भूमिका प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह की सेवन में, सेवा में निरंतर लगी रही, बनी रही। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश पहुंचाया, देखो तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। मरियम के पास स्वर्गदूत गया, यूसुफ के पास स्वर्गदूत गया, उन भेड़ चरवाओं को चराने वालों के चरवाओं के पास स्वर्गदूत गया और स्वर्गदूत ने उनके पास संदेश पहुंचाया। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे उस समय कब्र में भी, उस समय भी इन स्वर्गदूतों ने संदेश को पहुंचाया। जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहे हैं, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 10-11 पद को, तो प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने ऊपर आकाश में उठाए जा रहे हैं और वहां पर स्वर्गदूत खड़े होकर कह रहे हैं, देखो हे गलीली निवासियों, देखो जैसे इसको तुम ऊपर जाते हुए स्वर्ग की ओर जाते देखोगे, वैसे ही ये एक दिन फिर से वापिस आएगा। स्वर्गदूतों के द्वारा साक्षी दी जा रही है। मेरे प्रियो, ये अद्भुत योजना थी कि परमेश्वर पहले साक्षी मनुष्य से बढ़ करके उन स्वर्गदूतों के द्वारा प्रकट करा रहा है जो सच में मनुष्य से ऊपर सृष्टि और रचना है, क्योंकि वो उसके नियंत्रण में, स्वर्गदूत भी उसके नियंत्रण में। जब हम स्वर्गदूतों के बारे में अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के वचन में बहुत अधिक आशीष और आनंद मिलती है, लेकिन मेरा विषय आज वो नहीं, पर यहां पर हम देखना चाहते हैं स्वर्गदूतों की भूमिका प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सुसमाचार में। मरियम मग्दलीनी स्त्रियों ने पहली बार पहले थे जिन्होंने इस दर्शन को देखा, और कई बार कई सारे बाइबल के विद्वान इस बात को इस रीति से प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद सबसे पहला दर्शन स्त्री को दिया, शिष्य को नहीं दिया, पुरुषों को नहीं दिया। इसका एक बहुत बड़ा कारण था, अदन की वाटिका में जब पाप आया तो शैतान ने हव्वा को, स्त्री को बहकाया और बहका कर उसको गिराया और उसको सोचा कि इस स्त्री के पतन के द्वारा मैं जीत जाऊंगा और मेरा संसार मेरे वश में हो जाएगा और सब कुछ परमेश्वर की योजना समाप्त हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस जी उठने के संदेश को इन स्त्रियों तक सबसे पहले पहुंचाने के द्वारा इन स्त्रियों को सबसे पहले उस सुसमाचार संदेश देने के द्वारा और दिलाने के द्वारा शैतान के मुंह पर एक तमाचा मारा, हे दुष्ट, तूने सोचा था यह स्त्री के पतन के द्वारा मैं विजय पा जाऊंगा, देख यही स्त्री है जिसको मैं सबसे पहले अपने जी उठे संदेश को दूसरों तक पहुंचा रहा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना अद्भुत है। परमेश्वर अद्भुत रीति सब कुछ को नियंत्रण करता है। और तब उसके बाद दूसरी बात को हम देखना चाहेंगे, ना केवल स्वर्गदूतों की भूमिका है लेकिन स्वर्गदूतों की उद्घोषणा है। पांचवें पद में क्या उद्घोषणा है, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। तुम डरो मत। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय यह संदेश था, मत डर, मत डर, मत डरो। मैंने पहले भी कभी जिक्र किया है, अदन की वाटिका में जब पाप आया तो पाप के साथ भय आ गया, डर आ गया। ओ आदम हवा अपने आप को छुपाने लगे। जब परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहां है, तो वो कहता है, मैंने अपने आप को छुपा लिया, झाड़ी में छुपा रखा था, मैंने अपने आप को छुपा लिया क्योंकि मैं डर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का संदेश निर्भयता का संदेश है, क्योंकि परमेश्वर उस मनुष्य के अंदर से वो भय को, जो पाप का भय है, जो संसार का भय है, उससे हटाकर एक ऐसी आशा प्रदान करता है जिसमें आनंद, उत्साह, जोश और आशा भरी पड़ी है। और इसलिए यहां पर कहता है तुम डरो मत। वो कहता है मैं जानता हूं तुम उस यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, कब्र तो खाली है। तुम उसको कब्र में ढूंढ रही हो, तुम सोच रहे हो कि वो अभी यहां तक है, लेकिन वो यहां नहीं है। क्यों यहां नहीं है? तब आगे चल के कहता है क्योंकि वो अपने कहने के अनुसार जी उठा है। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में थे, उन्होंने बार बार इस बात को कहा। मत्ती उसके 12 अध्याय में, मत्ती उसके 17 अध्याय में, मत्ती उसके 16 अध्याय में, मत्ती उसके 17 अध्याय में, मत्ती उसके 20 अध्याय में बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यहां तक कि जब वो यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं, जब वो मंदिर को साफ करता है, उसके बाद उसने कहा इस से को, इस मंदिर को तुम गिरा दोगे, लेकिन मैं तीसरे दिन बाद उसको उठा खड़ा करूंगा। लोग कहने लगे अरे इस मंदिर के बनाने में तो 46 साल लगे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संकेत अपने स्वयं के लिए था। मेरे प्रियो, उसने बार बार कहा अवश्य मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन उठे, बार बार उसने कहा था। ये लोग भूल गए थे, ये लोग भूल गए थे। एक सुसमाचार कहता है बाद में महिलाओं को याद भी आ गया था कि अरे उसने अपने जीते समय कहा था, लेकिन शिष्य को याद नहीं था, इसलिए शिष्य कहीं और चले गए थे। वो अपने कथन के अनुसार होता है, और इसीलिए लूका बहुत ही सुंदर से एक बात कहता है। लूका उसके 24 अध्याय में, लूका 24 अध्याय और वो कहता है 27 पद में, तब उसने मूसा से आरंभ करके सब नबियों समस्त विश्वास में अपने संबंध में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद। क्योंकि मूसा की पुस्तक में, नबियों की पुस्तक में, भजनकार की पुस्तक में और पुराने नियम में बार बार यीशु के बारे में लिखा गया। मेरे प्रियो, बाइबल के विद्वान इस बात को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके जी उठने तक लगभग 353 ऐसी प्रोफेसिस या भविष्यवाणी पूरे वचन में पाई जाती हैं, जिनको हम एक एक करके पूरा होते देखते हैं। भजनकार उसके 16 अध्याय में लिखता है, भजन 16 में उसकी 11 पद में, और उसकी देह कब्र में सड़ने ना पाई, उसकी देह कब्र में सड़ने ना पाई। कई बार हम परमेश्वर के वचन में इस बार को देखते हैं। सो वो वचन अपने कथन के अनुसार जी उठा है। मेरे प्रियो, ये उसकी उद्घोषणा थी, ये उसकी उद्घोषणा, यीशु जी उठा है। और आज मैं और आप जब तक इस बात पर ना जाने कि हाँ जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते वो जी उठा परमेश्वर है। कई बार लोग आते हैं यहां पर, हम चर्च देखना चाहते हैं, कई बच्चे आसपास कॉलेज स्कूल है पढ़ते हैं और वो अक्सर बोर्ड देखकर चले आते हैं, और जब आते हैं आके अंदर हम चर्च देखना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा आइए, जब आते अंदर आते हैं अरे यहां तो कोई मूर्ति नहीं है, अरे यहां तो कोई माला नहीं है कुछ है। मैं उनसे बोलता हूं बच्चों एक बात बताओ बेटा, एक आध घटना को छोड़ करके, वो अलग घटना है, जब तक एक व्यक्ति जीवित रहता है क्या उसकी उसकी तस्वीर बनाकर उस पर माला अर्पण किया जाता है या उस पर धूप बत्ती लगाई जाती है? एक आध कहानी को छोड़कर, जब आदमी मर जाता है तो उसके स्मरण के लिए तब हम उसकी तस्वीर बनाते हैं या स्टैचू बनाते हैं और उसमें जो कुछ लगाते हैं। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, परमेश्वर आत्मा है, जीवित है, और इसलिए हमें किसी इस चीज को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। वो जी उठा प्रभु है मेरे प्रियो। और तब मैं उनको समझाता हूं और वो समझ नहीं पाते हैं, यीशु जी उठा है, हमारा विश्वास मिथ्या नहीं। तब उसके बाद आगे चल के तीसरी बात जिस पर थोड़ा रुकना चाहूंगा, वो कहता है यहां पर करके ना केवल ये, लेकिन वो कह रहा है अब इन स्वर्गदूतों के द्वारा निर्देश,
क्या निर्देश है? आओ उस जगह को देखो जहां वो पड़ा हुआ था, उसके चेलों को शीघ्र जाकर बताओ कि वो मुर्दों में से जी उठा है, मरो में से उठा है। कम एंड सी, गो एंड टेल, चार शब्द। आओ, देखो, जाओ, बताओ। पहले अनुभव कर लो, अपने जीवन में अनुभव कर लो यीशु जी उठा है। और मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में वो व्यक्तिगत अनुभव नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह जी उठे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमने अपने आप को जाना नहीं है, देखा नहीं है, मेरे प्रियो, तब तक हम आगे जाकर बता नहीं सकते। मैं अक्सर एक और उदाहरण देता हूं, अभी कई मीटिंग में दे रहा था। एक आम को बेचने वाला चौराहे पे खड़ा हुआ आम बेच रहा था, और वो टोकरे में आम भरे हुए थे, और लोगों से कह रहा है, आओ आओ ये आम खरीदो, ये आम मीठे हैं, मीठे हैं। और उसने आम को लेकर खा रखा था, और वो कहा आम उसके मुंह में ऐसे जैसे खाते हैं तो लग जाते हैं, लगे हुए थे। क्या कह रहा वो? आओ चखो और लो। परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद कहता है, उसको परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। कम एंड टेस्ट, कम एंड सी, आओ उसको चखो, आओ उसको परखो। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है जो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया है, जिसने तुम्हारे पापों को अपने क्रूस पर लेकर, अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जो बलिदान हो गया, वो पाप रहित था, वो निष्पाप था, उसने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर भी वो पाप को लेकर ऊपर चला गया। मेरे प्रियो कहता, आओ देखो जाओ और बताओ। क्या बताना है? ना केवल हमें देखना है, लेकिन उसको जाकर बताना है। और परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारी बातों को पाते हैं। यह पुनरुत्थान ने मुझे और आपको क्या दे दिया? दो तीन पदों को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। रोमियो उसका पहला अध्याय उसका चार पद, रोमियो उसका पहला अध्याय उसका चार पद, और यहां पर पौलुस इस बात को वर्णन करता है। पौलुस ने अपने जीवन में उसको देखा था, चखा था। वो कहता है, पवित्र आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है। उसी पर ये दोष लगाते थे, लोग निंदा करते थे, अपमान करते थे, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, तो उत्पत्ति की पुस्तक में हम अब्राहम के जीवन के बारे पाते हैं, और अब्राहम के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम तू जिस अपने इकलौते पुत्र से प्यार करता है तो उसको तू बलिदान करके चढ़ा दे। अब्राहम जाता है, अपने बेटे को वह वेदी बनाता है, उस वेदी पर अपने बेटे को रखता है, और पिता की आज्ञा को मानते हुए उस बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे वो अपने हाथ को बढ़ाता है, परमेश्वर उसको रोक देता है। अब्राहम, अब्राहम तू रुक जा, मैंने तेरे प्रेम को देख लिया। और तब परमेश्वर उसको रोक करके वहां पर एक उपाय करता है, इसीलिए वहां यह दिया गया, यहोवा इरे, यहोवा उपाय करने वाला। और वो उपाय ये था कि झाड़ियों में एक मेमना था, वो मेमना वहां से निकाला आता है और उस मेमने को उस वेदी पे बलिदान किया जाता है। अगर वहां पर इजाक बलिदान हो जाता तो फिर दूसरे और बलिदान की जरूरत ना होती, लेकिन परमेश्वर ने उसको बलिदान नहीं होने दिया। वो एक प्रतीक था, एक चिन्ह मात्र था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस प्रकार से बलिदान करेगा, जो जगत का, जो परमेश्वर का मेमना होगा और जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह जैसे सेवा में प्रवेश करते हैं
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखता है, वो कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और यहां पर हम परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि अगर वो केवल बलिदान होकर उस कब्र में जाकर कहानी खत्म हो जाती तो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर होती है। मेरे प्रियो, जितने आए सबकी कहानी कब्र में जाकर खत्म हो गई, लेकिन मसीह की कहानी कब्र में जी उठने के बाद आरंभ हो गई। ये फर्क है, ये फर्क है बाइबल में और अन्य विश्वास में, अन्य मतों में। प्रभु यीशु मसीह की कहानी उसके जी उठने के बाद आरंभ हो गई, और इसलिए उसके जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसको एक अपना इकलौता पुत्र करके स्वीकार किया, और ये उसने मेरे और आपके लिए किया। एक और पद, 4:25 में कहता है, 4:25, वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। ना केवल उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन उसके जिलाए जाने के द्वारा मेरे और आपको धर्मी ठहराए जाने के लिए स्रोत प्राप्त हो गया। हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते, हम अपने रीति विधियों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते। डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं कि एक मोटर कार में पैदा, मोटर गैरेज में पैदा होने वाला व्यक्ति मोटर कार नहीं बन जाता, डॉक्टर के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन जाता, एक मसीह के घर में पैदा होने वाले मसीह नहीं बन जाता। हम तो एक मांस का लोथड़े थे। मैं उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा, एक व्यक्ति बाजार में जाता है, एक तोते को खरीदता है, छोटे से पिंजरे में एक छोटा सा तोता है और उसको लेकर आता है। अगर वो तोता एक मुस्लिम भाई के यहां जाता है तो उसको वालेकम सलाम कहना सिखा देता है, हिंदू भाई के यहां जाता है तो जो कुछ भी बोलते हैं वो कहना सिखा देता है, अगर क्रिश्चियन के यहां जाता है तो जय मसीह कहना सिखा देता है। वो है तोता जो उस तरह से, मनुष्य तो मांस का लोथड़ा था, लेकिन वास्तविक रीति से पाप से छुटकारा, पापी अपने स्वभाव को पाप से पहचानना कि मैं पापी हूं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना कि उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, बलिदान हुआ, उसके जिन जी उठने को स्वीकार करना, उसके प्रतिदान को लेना, तब पाप से छुटका कर मैं धर्मी ठहराता हूं। यह परमेश्वर की योजना है, उसने अपने जी उठने के द्वारा मेरे और आपको धर्मी ठहराया। और इसीलिए कहता है आओ देखो अनुभव करो, जब तुम अनुभव कर लो कि हाँ यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं, यीशु मसीह ने तुम्हें उद्धार दिया है, यीशु मसीह ने तुम्हें जीवन दिया है, तो जाओ और बताओ। और यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जाति जाति के लोगों के बीच में प्रचार करो। मेरे प्रियो, ये किसी मनुष्य का निर्देश नहीं है, ये किसी मनुष्य के आगे नहीं, वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, हमारे परमेश्वर का आदेश है, उसकी आज्ञा है। जब हम संसार की मानवीय इस संसार में रहते हुए इन सरकार के आदेश का पालन करते हैं जो आज और कदों बदल जाएगी, तो अनंत काल का प्रभु, जो अनंत काल का सिंहासन, अनंत काल का राजा है, जिसका सिंहासन और राज युगानुयुग का, क्या हम उसके निर्देशों का पालन ना करें? इसलिए कहता है जाओ, जाकर सुसमाचार प्रचार करो, आओ देखो जाओ बताओ। ओ मेरे प्रियो, और यही जाकर फिर सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से प्रेरित काम उसके 2 अध्याय उसके 22-23-24 पद में बोलता है। इस पदों को आपको याद करना चाहिए, भाई एंडी हमारे बीच में आते हैं और जितनी बार आते हैं वो इन पदों पर जरूर हम सबका ध्यान लाते हैं, और मेरे लिए ये पद बहुत अधिक आशीष के कारण बने हैं। कहते हैं 22-23-24 पद, हे इस्राएलियों इन बातों को सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ के कार्य आश्य कर्मों और चिन्हों से उसने उसके द्वारा तुम्हारे समक्ष किए, तुम पर प्रकट किया जैसा कि तुम सब जानते हो। पहली चीज सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के कार्य। दूसरी बात, इसी से उसका जीवन, जो रहकर उसने इस जीवन को व्यतीत किया, उसकी लाइफ, उसका जीवन। दूसरी बात, इसी मनुष्य को जो परमेश्वर की पूर्व निश्चित योजना के और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने विधर्मियों के हाथों क्रूस पर कीलों पर ठुकवा कर मार डाला। वो क्रूस पर मारा गया, उसकी मृत्यु यीशु का जीवन, यीशु की मृत्यु, तीसरी बात वो मारा गया, परंतु परंतु तुमने मरवा डाला, वो मारा गया, कहानी यहां खत्म नहीं हो गई। परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। पुनः जीवित हो गया उसका पुनरुत्थान। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ये संदेश हमको देना है लोगों को। जाओ उसका सुसमाचार प्रचार करो, आओ देखो जाओ बताओ, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, हमने उसको जाना है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, उसने मुझे अपने संतान बनाया है, उसने मुझे धन आशा दी है, उसने मुझे अपने राज का वारिस बनाया है। ये साक्षी है, ये सुसमाचार हमें देना है। और इसीलिए मेरे प्रियो, केवल यहां खत्म नहीं हो गया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ईश्वर पर उठाए जा रहे थे, प्रेरित काम उसका पहला अध्याय उसका 10 और 11 पद इसको कहकर समाप्त करूंगा। तब क्या हुआ? जबकि वो जा रहा था तो उसे जाते हुए आकाश की ओर एक तक देख रहे थे, और देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग पे जाते देखा है। और अब आएगा तो प्रेरित काम 17 अध्याय उसके 30 और 31 वर्णन करता है, वो एक न्याय करने के लिए आएगा। पहले आया तो उद्धार के लिए रास्ता देने के लिए आया, उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए आया, उद्धार के लिए पाप को मिटाने के लिए, पाप का दंड ले स्वयं लेने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान उसमें अनंत जीवन है। और जो कोई प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मारा जाएगा, लेकिन जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और ये अनंत जीवन ये है जब वो स्वयं पुनः आएंगे, हम उनके साथ जिन्होंने विश्वास किया आकाश पर उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे। ओ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अनंत परमेश्वर है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में केवल ये प्रश्न का उत्तर है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हां जीवन है, और वो यीशु मसीह में। ये पुनरुत्थान का संदेश है मेरे प्रियो। काश परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे, और तब परमेश्वर अपनी शक्ति से बल देता है, हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, कि उस पुनरुत्थान की शक्ति में हम पाप पर विजय होते हुए उससे संघर्ष करते हुए दिन पर दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अंश अंश करके उसके रूप में बदलते हुए उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। पुनरुत्थान परमेश्वर की योजना है। कब्र खाली है, वो जी उठा है। आओ देखो जाओ और बताओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने कितना अधिक हमसे प्रेम किया है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ बहुत सीमित है प्रभु, बहुत सीमित है। पर धन्यवाद हो प्रभु आपकी इस अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद हो प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद हो प्रभु आपके अद्भुत हृदय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद देते प्रभु आप जी उठे प्रभु हैं, धन्यवाद देते हैं आप हमारी आशा हैं, आप हमारे साहस हैं, आप हमारी उत्साह हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बल हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। सच में उस धन्य आशा के लेके एक दिन आप आएंगे और आप हमें अपने साथ ले जाएंगे। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पुनरुत्थान की कथा को लोगों तक पहुंचाने में ना हिचकिचाएं, पर बहुत सारे लोग हो हमारे लखनऊ शहर में, हमारे प्रांत में, हमारे देश में, विश्व में, जो यीशु आपके पुनरुत्थान सामर्थ को अपने जीवन में अपना सकें, वो यीशु आपको देख सकें, आपको जान सकें। धन्यवाद इस वचन के लिए, इसका रक्षा कीजिए और हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य कीजिए। आप ही के पवित्र और मधुर नाम में मांगते हैं।